नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, उसके अनुसार वो जयद्रथ की तरफ दौड़ रहा है, बहुत से सैनिकों को मार रहा है, पराजित कर रहा है। इधर द्रोणाचार्य इस फिराक में है कि ये पांडव तो आज प्रतिज्ञा पूर्ति में लगेंगे, पीछे से युधिष्ठिर को कैद कर लें। परंतु युधिष्ठिर जी महाराज अपने पास सात्यकी को भेजते, तुम जाओ अर्जुन के पास। भीमसेन को भेजते हैं, दोनों का मन नहीं था। पहले सात्यकी को भेजा, फिर भीमसेन को भेजा। बार बार भगवान कृष्ण का पांचजन्य शंख सुनने पर युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा भ्रम हो गया, अर्जुन का शंख क्यों नहीं बजता है। भीमसेन से कहा, भीमसेन तुम जाना उधर, और जो भी स्थिति हो तुम शंख बजा करके मुझे सूचित कर देना। भीमसेन गए, पांचजन्य शंख, अर्जुन का शंख और स्वयं भीम का शंख सुना, तब युधिष्ठिर जी महाराज को शांति मिल गई। सूर्य तो अस्ताचल की तरफ चल रहा है, इधर मंद बुद्धि दुर्योधन बचे खुचे वीरों की रक्षा के लिए लगा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि अर्जुन अभी जीवित है, बड़े आनंद की बात है। परंतु साथ साथ में डरे हुए भी हैं कि क्या सूर्यास्त के बाद कृष्ण और अर्जुन से मेरी भेंट हो जाएगी, क्या अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर ये मंद बुद्धि दुर्योधन अभी भी अपने वीरों की रक्षा के लिए हमसे बैर छोड़कर संधि करना चाहेगा। यदि संधि कर ले तो इतने लोगों की मृत्यु टल जाए। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने विचारों में डूबे हुए थे। धृतराष्ट्र ने कहा, ये सब गड़बड़ करता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने कोई टिक सके। सच कहता हूं, जब तुम ये कहते हो कि भीमसेन आगे बढ़ता है तो मेरा हृदय यहां दूर बैठे कांपता है। तुम सोचो संजय, जो रथ पर बैठे हुए को रथ सहित उठाकर, घोड़ों सहित उठाकर पटक देता है, और जो हाथी पर हाथी को उठाकर दे मारता है, उसके बल की कोई सीमा है? भीम का नाम सुनने से जो भय लगता है वह न अर्जुन से, न कृष्ण से, न सात्यकी से, न धृष्टद्युम्न से, किसी से नहीं लगता है। बताओ संजय, ये जब भीम अर्जुन के पास गया होगा, मेरे पुत्रों को तो नहीं मारा होगा ना, बताओ। संजय कहने लगे, महाराज आपकी करनी का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस समय भीमसेन ये बड़ी भारी गर्जना कर रहे थे, उस समय महाबली कर्ण भी भीषण सिंहनाद, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा सिंहनाद करता हुआ युद्ध के लिए भीमसेन के सामने डट गया। भीम ने अपने सामने खड़े हुए कर्ण को देखा, भीम क्रोध से तमतमा उठा और कर्ण की बातें याद कर करके क्रोध में भरकर उसने बाणों की वर्षा की। कर्ण ने भी बदले में बाण की वर्षा की। दोनों का भीषण नाद सुनकर के बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट गए, गर्जना से किनी के प्राण निकल गए, हाथी और घोड़े बेहोश हो गए, भयभीत हो गए, निरुत्साहित हो गए। कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े और 5 बाणों से सारथी को बींधा। भीमसेन ने उसका धनुष काटा, 10 बाण से उसको घायल किया, फिर भारी चोट ने कर्ण को विचलित कर दिया और वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण जो ही चढ़ाता है त्यों ही भीमसेन उसके बाण को उसके धनुष को काट देते हैं। घोड़े को धराशायी कर दिया, चारों घोड़ों को। कर्ण तुरंत अपने रथ से कूद करके वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान जोर से गर्जना करने लगा। तब धर्मराज समझ गए कि अब भीमसेन ने कर्ण को परास्त किया है, बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना भीमसेन के द्वारा तितर बितर हो रही है और अब अर्जुन, सात्यकी और भीमसेन तीनों एक जगह खड़े होकर जयद्रथ के पास पहुंचने वाले हैं, तो बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया, घबराते हुए कहने लगा, आचार्य चरण, अब तो अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी तीनों महारथी हमारी विशाल वाहिनी सेना को तितर बितर परास्त करके बेरोक टोक सिंधुराज के पास बड़े तेजी से चले जा रहे हैं, किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। वहां हमारा सेना का संहार हो रहा है, आप इस व्यूह के चक्कर में पड़े हुए यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको वहाँ जयद्रथ को बचाने के लिए जाना चाहिए। आपको पता है सात्यकी और भीम किस प्रकार आपकी सेना को परास्त किए हुए जा रहे हैं? ये बात तो समुद्र को सूखा डालने वाली बात है। जैसे समुद्र कभी सूखता नहीं है पर कोई कहे कि सूख गया तो आश्चर्य होता है, उसी प्रकार आपको देखकर भी हमें आश्चर्य होता है कि ये भीमसेन और सात्यकी निकल गए। ऐसा लगता है कि आप भी इन पांडवों की विजय चाहते हो। इस संग्राम में इस अभागे दुर्योधन का नाश अवश्यम भावी है, आप मेरा नाश करना चाहते हो। खैर, जो होना था सो हो गया, आगे विचार करो, सिंधुराज की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, जब तुम पर आफत आती है तुम मेरे पास दौड़ करके आते हो, जब हम बैठकर चर्चा करते हैं तब तुम अपने साथियों की और अपने वीरत्व की बड़ी गाथा गाते हो, अपने मुख से तुम बड़ी प्रशंसा करते हो, कहते हो देवता भी आ जाए तो हमारे सामने कौन टिक सकता है, और ये तीन महारथी हमारी सेना को लेकर भीतर घुस गए और तुम देखते रहे, फिर तुम जाओ ना युद्ध करने के लिए। जयद्रथ क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है, दुर्योधन जाओ उसकी रक्षा करो, अपने प्राणों की परवाह न करके जयद्रथ की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध रूपी दूत में हमारी जीत हार का प्रश्न नहीं है, अभी प्रश्न जयद्रथ की रक्षा का है। जल्दी जाओ और उन रक्षकों को कहो मैं यहाँ रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल, पांडव, श्रींजय आदि वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की बात सुनकर मुंह लटकाकर आपका प्रिय पुत्र दुर्योधन अपने ऊपर बड़ा भारी भार लेकर अनुयायियों सहित तुरंत वहां से टूटे हुए मन से चल पड़ा। जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तम औजा और युधामन्यु को भीतर नहीं आने दिया। अब वे बाहर आकर के सेना के बीच में घुसने का रास्ता देखते देखते ऐसी जगह से अंदर घुस गए कि वे भी अर्जुन के पास पहुंच गए। गुरुराज दुर्योधन ने एक नया आश्चर्य देखा। अब वो सबसे पहले युधामन्यु से युद्ध करने लगा। दोनों का खूब युद्ध हुआ। फिर उत्तम औजा के घोड़ों के साथ में उत्तम औजा के घोड़ों को और सारथियों को मार दिया दुर्योधन ने। उत्तम औजा ने बड़ी फुर्ती से युधामन्यु के रथ पर चढ़कर दुर्योधन के घोड़ों के ऊपर बाणों की वर्षा की और वे घोड़े पृथ्वी पर मर करके गिर गए। बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकस को काटने लगे। दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों से युद्ध करने लगा। इधर युधामन्यु और उत्तम औजा भी रथ से कूद पड़े और अपनी गदा से सारथी ध्वजा घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर चूर कर दिया। और इसके बाद राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया दुर्योधन। और इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। महाराज, इस समय सब लोगों की एक ही दृष्टि थी, जयद्रथ को समाप्त करना, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को समाप्त करना। इधर कौरवों की यही रणनीति रही कि जिसी किस प्रकार से जयद्रथ को बचाना और युधिष्ठिर को कैद करना, सब इस नीति को समझते हुए चल रहे थे। इस समय भीमसेन भी कर्ण से अपना पिंड छुड़ाकर कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब वे उधर चलने लगे तो कर्ण ने पीछा कर उनके ऊपर बाण बरसाया और ललकार कर कहने लगा, ए भीम, आज तू अर्जुन को देखने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है, अभी मेरे सामने युद्ध करता करता तू पीठ दिखाकर कैसे जा रहा है? ए भीम, ये काम कुंती के पुत्रों के योग्य नहीं है, जरा मेरे सामने डटकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो। भीमसेन कर्ण की चुनौती नहीं सह सके। अपना रथ जो अर्जुन के पास तक पहुंच रहा था उसने लौटाया, रथ से लौट कर गए और वो कर्ण से युद्ध करने लगा। खूब बाणों की वर्षा होने लगी। कर्ण के शरीर को बाणों से बीन दिया, घोड़ों को घायल कर दिया और कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन और उसके रथ ध्वजा सब आच्छादित हो गए। और फिर कर्ण ने ऐसी झड़ी लगाई कि भीमसेन का शरीर एकदम बाणों से बिंद गया। भीमसेन कर्ण का ये बर्ताव सह नहीं सके, आंखें उनकी लाल हो गई, खूब बाण छोड़े, धनुष को तोड़ते गए और अंत में घायल होकर कर्ण पृथ्वी पर जा गिरा। कर्ण को अपने पुरुषार्थ पर बड़ा अभिमान था, किंतु बार बार उसका धनुष कटता गया, असमंजस में पड़ गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंत में वो दौड़ करके किसी दूसरे रथ के ऊपर चढ़ने लगा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, कर्ण की ये दशा होती है? भीम ने कर्ण को ऐसा परास्त किया? कर्ण तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण थे, फिर भीमसेन ने खेल ही खेल में उसको ऐसे जीत लिया। मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कर्ण के ऊपर बड़ा भरोसा रखता था, अब मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन भीम के साथ लड़ते हुए और भागते हुए कर्ण को देखकर क्या सोचता होगा? और महाबली भीम ने उसके बाद किस प्रकार से युद्ध किया और कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित देखकर क्या किया होगा? संजय, मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला, उस समय आपका पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन की आग में ये कर्ण जलने ही वाला है। न तो कर्ण का वो तेज था, न कर्ण के भुजाओं में वो बल रहा, न उसके धनुष की वो टंकार थी, फिर भी अपनी आन मान और शान के लिए वो भीमसेन के ऊपर धावा करने लगा। बस फिर क्या था, जैसे आकाश में दो बाज आपस में लड़ते हों, इस प्रकार से भीमसेन और कर्ण लड़ने लगे। राजन, उस समय भीमसेन के सामने वो दृश्य आने लगा जो जुआ खेलते समय में कर्ण ने अपने आप को किन शब्दों से कहा था। वन में रहने का दृश्य याद आया, कितना कितना हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य और रत्न हर लिए। आपके पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह तरह का क्लेश देते रहे। आपने पुत्रों के सहित निरपराधिनी कुंती को लाक्षा भवन में भस्म करने का विचार किया। आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह तरह से तंग किया। दुशासन ने उसके केश पकड़कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर शब्द कहा कि जो पांच पांच पतियों की पत्नी होती है वो वेश्या नहीं तो क्या है। जाओ, तुमने इतने पति चुने हैं तो और किसी दूसरे को पति चुन लो। इन सब बातों को भीमसेन याद कर करके प्राणों का मोह छोड़कर एकदम कर्ण पर टूट पड़े। उनके शरीर में इतनी फुर्ती देखी, कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद हो गया। बाण पर बाण छोड़ा। सब बातें याद आ रही थी, जो जो बातें याद आए उन सब में भीमसेन का क्रोध बढ़ता गया और फिर कर्ण और भीमसेन का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सभी महारथी बड़े आश्चर्य के साथ इन दोनों का युद्ध देख रहे थे। दोनों ही वीर घोड़े हाथी सबको मार रहे थे। मनुष्य मर मर करके धरती पर लोटपोट हो रहे थे। उस समय आपके पुत्रों ने अनेकों योद्धा मारे गए। प्राणहीन होकर वे जमीन पर गिरे हुए इस बात का संदेश दे रहे थे कि अन्याय का पक्ष लेने वालों की क्या दशा होती है। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर कितने बाण मारे कोई गिन नहीं सकता था। फिर उसने एक महाशक्ति उठाई और उसको घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, बड़ी आशा के साथ कि ये भीमसेन को समाप्त कर देगी। किंतु भीम ने 7 बाणों से उसको बीच में ही काट दिया। फिर उसने दूसरा धनुष लिया, भीमसेन ने उसको काट दिया। इस प्रकार से उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, वो रथ से नीचे गिर गया। ऐसी अवस्था देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, अरे तुम यहाँ क्या करते हो? वहाँ कर्ण मर रहा है, जाओ भीम के साथ युद्ध करो। दुर्जय ने कहा, जो आ गया। वो बाणों के साथ बरसा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। भीमसेन ने उसको तिरछी नजर से देखा। अच्छा, तुम कर्ण की सहायता के लिए आए? कर्ण की सहायता तो तुम कर नहीं सकोगे और तुमको मैं यमलोक में भेजता हूँ। इतना कहते ही उस पर ऐसे बाणों की बरसा की, दुर्जय वहीं पर खत्म हो गया। चिल्ला चिल्ला करके कहा, आओ, इसी की हिम्मत है कर्ण की रक्षा के लिए। दुर्योधन के भाइयों, आओ, सब मिलकर के आओ। आज तुम सबको कर्ण के पक्ष का फल चखाने के लिए भीमसेन रणभूमि में तुमको ललकार रहा है। कर्ण रोने लग गया। कर्ण रोया कि अरे दुर्जय, तू मेरे कारण से मरा है। इसी बीच भीमसेन ने कर्ण के रथ को कर्ण को दिखा दिखा करके तोड़ दिया। यही तेरा रथ है, तोड़ दिया उसको। फिर भीमसेन बड़ा आग बबूला होकर फिर कर्ण से युद्ध करने लगा। वो भीमसेन की छाती पर बाणों की बरसा करने लगा। भीमसेन ने कर्ण को फिर अश्वहीन कर दिया, घोड़ा रहित और रथ रहित हो गया। कर्ण का इस प्रकार का युद्ध भीमसेन के साथ चल रहा था। दुर्योधन ने अपने दूसरे भाई दुर्मुख से कहा, रे दुर्मुख, देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है, अब तो मारने वाला है, जल्दी जाओ। तो दुर्मुख को अपने पास, अच्छा, हमारी चुनौती सुनकर तुम आए हो दुर्मुख, आओ, हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। भीमसेन रणभूमि में तुम्हारा स्वागत करता है। कर्ण की रक्षा करोगे या अपनी रक्षा करोगे? इतना कहकर उसने इतने क्रोध में भरकर बाण लगाया, वो दुर्मुख एक बाण से वहीं पर खत्म हो गया। कर्ण कुछ आगे पीछे न करके फिर भीमसेन से लड़ाई करने लगा। ऐसे करते करते कर्ण बहुत घायल हो गया और फिर वो रणभूमि से तत्काल भाग गया। कर्ण भीमसेन अभी भी वहां गर्जना कर रहे थे, लाओ आओ दुर्योधन, भेजो अपने भाइयों को। धृतराष्ट्र के संजय, इस पुरुषार्थ को धिक्कार है, मनुष्य का भाग्य कितना बड़ा होता है। कर्ण जो इतना सावधान, आज उसको भीम जैसे मूर्ख व्यक्ति ने काबू में कर लिया। इसका मतलब है कि पुरुषार्थ कुछ नहीं है, प्रारब्ध ही सब कुछ है। दुर्योधन के मुख से तो मैंने बार बार सुना था कि कर्ण बलवान है, शूरवीर है, धनुर्धर है और परिश्रम को कुछ भी समझता ही नहीं है। इसकी सहायता करने पर तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकते, पांडवों की तो बात ही क्या है। जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्त होकर युद्ध से भागते देखा होगा तो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन को क्या अनुभव हुआ होगा। संजय, भीम के सामने टिकने का कौन साहस करता है। मैं तो युद्ध से पहले भीम की प्रतिज्ञा से बहुत दुखी था। जब जुए के खेल में भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अकेला मारूंगा, तब से संजय मेरा हृदय तो एकदम डर गया था। आज देखो भीम के सामने कोई नहीं टिक सका। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर भीम के सामने गए उनकी क्या दशा हुई, अग्नि में पतंगे के समान जा गिरे। हमारी सारी सेना को उसने दबोच लिया, मेरे पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की उसको पूरा कर रहा है। कर्ण को पराजित देखकर दुर्योधन और दुशासन तो डर के मारे उसके पास गए ही नहीं होंगे ना। संजय, कर्ण को रथहीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधन को कृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा। उसके मन में ये बात जरूर आई होगी कि यदि मैं संधि कर लेता तो आज कर्ण की ये दुर्दशा नहीं होती। युद्ध में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य संताप हुआ होगा। भला जो अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी है जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे आ जाए। मेरा तो निश्चय है कि बड़वानल की ज्वालाओं में पड़कर भले ही कोई बच जाए पर भीम के क्रोधाग्नि के सामने कोई भी बच नहीं सकता। संजय, मेरा चित्त घबरा रहा है, मेरे पुत्रों का जीवन बड़ा संकटमय है, बताओ उनकी क्या दशा है। संजय ने कहा, गुरुराज, इस महाभय के लिए आज आप चिंता करने चले, आपको विचार नहीं आता है। जब मनुष्य चिंता का समय होता है, विचार करने का समय होता है, तब तो करता नहीं, और जब उसके सामने परिस्थितियां उस चिंतन के विपरीत घटित होती हैं, तब वो रोता है। वो दशा आज आपकी हो गई, आप ही ने तो पुत्र के हां में हां मिलाया था ना। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया किंतु मरणासन्न पुरुष जैसे दवाई को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी एक की नहीं सुनी। आपने स्वयं ही ये जहर पिया है, अब आप ही इस जहर को भोगो। संजय, मैं तो केवल तुमसे युद्ध की बात पूछ रहा हूं, तुम मुझे आगे का युद्ध का वर्णन सुनाओ। संजय कहने लगे, महाराज, कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके 5 पुत्र दुर्मर्षण, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर और जय ये सहन नहीं कर सके, एक साथ भीम के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने विचार किया, भीमसेन एक मूर्छ से लड़ेगा, हम 5ों एक साथ लड़ेंगे। चारों तरफ घेर लिया, बाणों से टिड्डी के समान, टिड्डी दल के समान उनके ऊपर आक्रमण किया। भीमसेन ने कहा, अच्छा, तुम्हें अपने मरे हुए भाइयों से बड़ा प्रेम है, इसलिए अब तुम भी उन्हीं के साथ उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहते हो। आओ भाइयों, और जो मेरे हाथ से निकलकर परलोक में गए अपने भाई उनसे जाओ, बड़े प्रेम से मिलो। आओ, बहुत अच्छा भ्रातृ प्रेम तो इसी को ही कहते हैं। ऐसा कहकर के भीमसेन ने उनको जो वहां मारना चालू किया, एक साथ भीमसेन ने ऐसे बाणों से उनको ढक दिया, सब यमराज के हवाले हो गए। भीमसेन का ये पराक्रम आज देख करके सब पराभूत हो गए। कर्ण ने विचार किया, क्या करूं, मेरे लिए दुर्योधन के भाई मरते जा रहे हैं और मैं यहाँ युद्ध भूमि से भगा हुआ अच्छा नहीं लगता। वो वापिस रथ पर बैठकर आया और भीमसेन के साथ खूब युद्ध करने लगा और भीमसेन ने फिर उसके धनुष तोड़ दिए। महारथी कर्ण अपने टूटे हुए रथ को छोड़कर दूसरे रथ के ऊपर जा बैठा और गदा युद्ध करने के लिए भीमसेन को ललकारने लगा। भीमसेन ने कहा, अच्छी बात, गदा युद्ध तो मुझे ज्यादा प्रिय है। बाण को रोका और गदा से युद्ध करने लगा। दोनों की गदा युद्ध की पैंतरेबाजी देखी गई। फिर कर्ण युद्ध से पीछे हटने लगा। दुर्योधन ने फिर अपने भाइयों से कहा, अरे सब ओर से सावधान रहकर तुम कर्ण की ओर बढ़ो। भाई की बात सुनकर चित्र उपचित्र चित्राक्ष चारु चित्र शरासन चित्रायुध और चित्रवर्मा ये सात भाई आए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। और भीमसेन ने देखा ये सात आ रहे हैं, एक ऐसा निशाना लगाया, सातों का एक बाण से कट 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 करके उनके सिर उड़ गए। असल में कर्ण उस समय उन भाइयों को मना करने के लिए जा रहे थे, दुर्योधन के पास ये कहने के लिए जा रहे थे कि दुर्योधन अभी भीम के साथ तुम कोई भाइयों को मत भेजो। पर इतनी दूर तक कैसे आवाज जाए, पास में जाना चाहते थे, जा नहीं सके, गए तो था इसलिए। और भीमसेन बीच में युद्ध करके उनको पूरा कर दिया। अब दुर्योधन को बड़ा विचार आया, कर्ण यहां आंखों में पानी लिए हुए याद करने लगा कि अरे विदुर जी ने ठीक ही कहा था, युद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु ये तो युद्ध छिड़ गया, अब क्या होगा, भीमसेन कैसे काबू में आए। थोड़ी देर में वो कर्ण दूसरे रथ पर चढ़ गया, फिर भीमसेन के सामने आया, बाणों की झड़ी लगी। बार बार क्या बताए, उस समय कर्ण और भीम के युद्ध को सब योद्धाओं ने युद्ध बंद करके देखा। भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखकर आपकी तरफ के योद्धा और पांडव पक्ष के बड़े बड़े महारथी आश्चर्य करने लगे। बीच बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन भीमसेन के लिए शाबाशी का शब्द बोलते हैं। इधर कृपाचारी भूरिश्रवा अश्वत्थामा शल्य जयद्रथ स्वयं और उत्तमौजा युधामन्यु सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन कुछ आपके और कुछ कौरवों के सब पक्ष साधु साधु वाह वाह भीमसेन वाह। भीमसेन का उत्साह बढ़ रहा है। दुर्योधन को बुरा लगता है, अरे कम से कम मेरे पक्ष वालों को तो भीमसेन की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, वाह वाह नहीं कहना चाहिए, पर अब इनको जाके कौन समझाए। दुर्योधन ने कहा, अरे धनुर्धरो देखो भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को नष्ट कर रहे हैं, बचाओ। फिर बड़े बड़े सात महारथी आए दुर्योधन के भाई। जो दुर्योधन के भाई वहां आते थे उस समय अर्जुन कर्ण भीमसेन कर्ण को छोड़ करके उनसे युद्ध करते थे, संभवतः महाराज 100 बेटों का नाश करना था, ऐसे ही तो मरेंगे। आज भीमसेन को बड़ा अच्छा मौका मिल गया, कर्ण के बहाने से दुर्योधन कर्ण की रक्षा के लिए अपने भाइयों को भेजता है और भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, बड़ा अच्छा मौका मिल गया भीमसेन को। उस समय में आपके सात पुत्र शत्रुंजय शत्रु सह चित्र चित्रायुध दृढ़ चित्रसेन और विकर्ण मारे गए भीमसेन के द्वारा। इनके मरे हुए की लाश में से विकर्ण के पास भीमसेन गया और मरे हुए विकर्ण को अपने छाती से लगाया। भीमसेन शोक करने लगा, विकर्ण अपने भाइयों में तुम एक सत्य बोलने वाले थे, परंतु मैंने उससे पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारूंगा। जब तुमने भरी सभा में खड़े होकर ये कहा कि दुर्योधन ने अधर्म से जुआ जीता है, द्रौपदी हारी नहीं गई है, तुमने हमारा जो समर्थन किया था वो यदि तुम पहले कर देते तो तुमको छोड़ करके मैं प्रतिज्ञा करता, तुमको मारकर मैं आज बहुत रोऊंगा। छात्र धर्म की मैं आज निंदा करता हूं। हे भैया विकर्ण, तुम तो विशेषतः हमारे पक्ष के और महाराज युधिष्ठिर के हितेशी थे, पर क्या करो, युद्ध बड़ा कठोर होता है। विकर्ण तुम सत्यवादी थे, सत्य का पक्ष लेने वाले थे, मैं बड़े कोमल हृदय से प्रार्थना करता हूं तुम दिव्य लोक में जाओ। भीमसेन इधर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उधर धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उनके पास ये समाचार गया है कि आज कर्ण को बार बार दुर्योधन कर्ण को बार बार धूल चटा रहे और दुर्योधन अपने पुत्रों को बार बार उनके पास भेज रहा है और वो सब मारे जा रहे हैं। इधर दुर्योधन को विदुर जी के शब्द याद आ रहे हैं, मन ही मन में कहने लगा विदुर जी दूरदर्शी हैं, उन्होंने हमारे हित के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी। बहुत विचार करने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। राजन, द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को सभा में बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्ण ने जो कहा था वो आपको भी याद है ना धृतराष्ट्र महाराज? क्या कहा था? कर्ण ने कहा, कृष्णे पांडव लोग तो अब नष्ट होकर सदा के लिए दुर्गति में पड़ गए हैं, तुम कोई दूसरा पति चुन लो और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। ये शब्द कोई कहने लायक थे? आपके सामने ये कहे और आपने सुना और आप कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने उस समय गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, महाराज आपकी कुल वधु का ऐसा अपमान आपके सामने हो रहा है, आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? परंतु आप जो मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, उसका फल आज आप और आपके पुत्र भोग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें कहकर मेरे हृदय को क्यों तोड़ रहे हो? उधर तो युद्ध के अंदर भीमसेन वगैरह बाण लगाकर मेरे पुत्रों को मारते हैं और तुम यहां बैठे बैठे मुझे वाणी के बाणों से मारते हो। संजय मुझे तो ये बताओ, जो हो गया सो हो गया, पीछे की बात क्यों तुम दोहराते हो? तुम तो ये बताओ ना कि अब आगे क्या युद्ध हो रहा है? संजय ने कहा, महाराज कर्ण और भीम जैसे मेघ जल बरसाते हों उस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कौन हारेगा कौन जीतेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा। कभी कर्ण भारी पड़ते हैं तो कभी भीमसेन भारी पड़ते हैं और इधर बीच में हाथी घोड़े मनुष्य ये सब एक खून की नदी के अंदर बहते जा रहे हैं और इसमें ये मानना है आपके सैनिक ज्यादा मात्रा में मर रहे हैं। राजन कर्ण ने भीमसेन पर तीन बाण प्रहार किया तो फिर भीमसेन को इतना क्रोध आया, उन्होंने एक बाण लेकर के उनका सिर काटने का था विचार, वो सिर तो कटा नहीं, कान के पास से वो बाण निकल गया, उनका कान कट गया और कुंडल सहित कान वो जमीन पर गिर गया। ये भी अपने आप में बहुत था। उस समय कर्ण को भयंकर मूर्छा आई, कर्ण अपने रथ के अंदर डूबक गया, नेत्र बंद कर लिए, सोचा कि थोड़ी देर में मूर्छित हो रहा हूं तो कुछ होश आ जाए। इतने में ही भीमसेन गदा लेकर उसी के रथ के ऊपर कूद पड़े और उसको पकड़ करके अपने गदा से मारने लगे। तो बाद में उनके मन में विचार आया कि ओ अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कर्ण को मैं मारूंगा। उस प्रतिज्ञा को याद करके कि मेरे छोटे भाई की प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए, इसलिए भीमसेन ने ऊपर का युद्ध किया, उसके प्राण नहीं लिए, अन्यथा उसी के रथ पर चढ़ करके भीमसेन तो उसके प्राण ले सकता था। कर्ण ने देखा कि मैं अपने युद्ध कौशल से आज भीमसेन के हाथ से निकल गया हूं। फिर वो कर्ण ने हंसते हंसते भीमसेन के साथ युद्ध किया, बड़ा भयंकर फिर युद्ध होने लगा। इधर युद्ध करते करते भीमसेन के हाथ से शस्त्र छूट गए, भीमसेन घबराया नहीं, भीमसेन ने रथ उठा उठा के उस पर फेंके, अब वो रथों को तोड़ने में लग गया, फिर हाथी उठा उठा करके फेंके, हाथी लोथपोत हो गए, जो चीज आए वो फेंकता चला गया, जो चीज आए जो फेंकता गया और अर्जुन उसको काटता गया। अर्जुन नहीं कर्ण, अर्जुन नाम आ गया झूठे। जब भीमसेन ने देखा कि अब अर्जुन के अब कर्ण के पास में किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं रहा है, तब वह भीमसेन भी घूसा लेकर कर्ण को मारना चाहता था, कर्ण का गला पकड़ लिया और वो छाती में मुक्का मारने वाले थे। फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आई और कुंती की बात याद करके शस्त्र ही नवस्था में उसने उसका वध नहीं किया। कुंती की हाँ, फिर कर्ण ने इसका बदला लिया। जब भीमसेन ने छोड़ दिया तो कर्ण ने देखा कि अब कर्ण को जो है ये मालूम थोड़ी था कि भीमसेन ने मुझे छोड़ा है। कर्ण ने अब की बार पूरी शक्ति लगाई, बाणों से और दूसरे शस्त्रों से युद्ध करते हुए भीमसेन को मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने के बाद जब वो अपनी गदा से उसके छाती पर प्रहार करने लगा तो कुंती की बात याद आई कि मैंने कुंती को वरदान दिया है कि चार पुत्रों को नहीं मारूंगा। फिर उसने पास में आकर उसके शरीर में अपने धनुष की थोड़ी सी नोक लगाई और उसका स्पर्श किया। भीमसेन को क्रोध आया, कर्ण से फिर युद्ध करने लगा। कर्ण ने कहा, अरे निमूछिए, अरे मूर्ख, अरे पेटू चट्टू, तुझे शस्त्र अस्त्र संभालने का भी शौर नहीं है, युद्ध करने के लिए क्यों आया है, क्यों मेरे साथ भिड़ने की चंचलता करता है, जहां तहां रहो, खाने पीने की चीजों पर ध्यान दो, जंगलों में रहो, फल फूल खाओ और व्रत नियम का पालन करो, युद्ध मत करना। भीमसेन, युद्ध तो हमारे जैसे वीरों का काम है, तुम लोगों को तो मुनि वृत्ति में रहना चाहिए, जो खूब आराम से खाओ, तालाब भर पानी पियो, तुझे युद्ध करने का ज्ञान ही नहीं है तो क्यों आया युद्ध करने के लिए, मेरे जैसे वीरों के सामने तुझे इस प्रकार शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता है। कर्ण के ऐसे ऐसे शब्द, अब तू या तो कृष्ण के पास चला जा या अर्जुन के पास चला जा, ये तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने घर चला जा, बच्चा है चला जा, हमने तेरे को जीवन दान में दिया। कर्ण के ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर भीमसेन इतना क्रोधित हुआ कि दुष्ट, मैंने तुझे इतनी बार धूल चटाई है, मैंने तो कभी अपने मुंह से ऐसी शेखी नहीं बना ली, हमारे महापुरुष सच्ची बात कहते हैं कि जय और विजय तो इंद्र की भी होती आई है। अरे अकुलीन ए सूत पुत्र कर्ण, मेरे साथ मल्ल युद्ध करके देख, मैंने महाबली महाभोगी कीचक को पछाड़ा है, इन सब राजाओं के सामने तुझे आज काल के हवाले कर सकता हूं। वो कर सकता हूं ही बोले हैं, कर दूंगा या कर ही दूंगा ऐसा नहीं बोला है। बुद्धिमान कर्ण भीमसेन के इन शब्दों को ताड़ गया और वो युद्ध से चला गया। कृष्ण और अर्जुन के सामने ही ऐसे न कहने योग्य बातें जब ये बोल रहा था तो कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उस पर कई बाण छोड़े। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण के शरीर में घुस गए और तुरंत ही बड़ी तेजी से भीमसेन के सामने से कर्ण भाग गया। तब भीमसेन सात्यकी के रथ पर सवार होकर अपने भाई अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से कर्ण को लक्ष्य करके एक काल के समान कराल बाण छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा ने बीच में ही उसको तोड़ दिया। अर्जुन ने कुपित होकर अश्वत्थामा को कहा, जरा खड़े रहो गुरुपुत्र, तुम आकर उसकी रक्षा करते हो तो भगना मत। अश्वत्थामा के साथ अर्जुन युद्ध करते रहे और उसके बाद अश्वत्थामा भी वहां से चले गए। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय सूर्य तो अस्त होने वाला हो रहा होगा ना, ये मैं समय का फेर ही समझता हूं, जयद्रथ मर गया क्या? जयद्रथ का कोई समाचार नहीं सुनाते हो, जयद्रथ कहाँ है? जो उस विशाल वाहिनी को अकेला मथित करता हुआ अर्जुन घुस गया था और सात्यकी उसके साथ में था, तो इस समय सात्यकी अर्जुन वगैरह कहाँ है? संजय ने कहा, राजन सात्यकी अपने श्वेत घोड़ों से जूते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करते हुए जा रहा था, उसको रोकने के लिए राजा अलंबुश आए और अनेक प्रकार का प्रयत्न करने लगे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और सात्यकी ने अलंबुश का कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिया। फिर त्रिगर्त देश के वीर लोग सात्यकी से युद्ध करने आए, वो भी धराशायी हो गए। फिर उसके बाद सूरसेन देश के राजा आए, कलिंग देश के राजा आए, सब मरते गए। इस प्रकार से सबको मारता मारता सात्यकी जब आ रहा था अर्जुन के पास, तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सात्यकी तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारे पास आ रहा है, महापराक्रमी है, तुम्हारा मित्र भी है, तुम्हारा शिष्य भी है, सब योद्धाओं को परास्त करता हुआ तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा वो प्राणों से भी प्यारा है, कौरवों का युद्ध संहार हो करके आपके पास आ रहा है। सात्यकी ने आज द्रोणाचार्य भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है और अलंबुश आदि का कितनों का ही वध किया है, धर्मराज युधिष्ठिर ने सात्यकी को आपके पास भेजा है। अर्जुन उदास हो गए, महाबाहु सात्यकी मेरे पास आ रहा है इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहां चले आने पर धर्मराज युधिष्ठिर जीवित भी होंगे या नहीं, अथवा उनको कोई कैद तो नहीं कर लिया है, उनकी रक्षा हर स्थिति में जरूरी थी और मैंने इसको इसीलिए उनके पास रखा था कि सात्यकी के समान कोई दूसरा योद्धा इनकी रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण क्या करूं, बड़ी दयनीय अवस्था हो रही है, इधर तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के लिए खुली स्थिति में हो गए, इधर सूर्य ढलता चला जा रहा है, जयद्रथ का वध नहीं हुआ है और अभी तक कितनी विशाल सेना सामने खड़ी है और ये भूरिश्रवा कौरवों का बड़ा श्रेष्ठ योद्धा है, ये सात्यकी की ओर बढ़ता चला आ रहा है, अब सूर्य ढल चुका है, मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है, सात्यकी भी थका हुआ है, इसके सारथी और घोड़े अब ढीले हो चुके हैं। भूरिश्रवा को अभी कोई थकान नहीं है। अब ये भूरिश्रवा सात्यकी के साथ युद्ध करेगा। इधर धर्मराज द्रोणाचार्य के चंगुल में फंस जाएंगे। उन्होंने क्यों सात्यकी को इनके पास भेजा है, मैं उनकी भूल समझता हूँ। अब क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। संजय कहते हैं इधर सात्यकी का और भूरिश्रवा का खूब घमासान युद्ध हुआ। भूरिश्रवा ने कहा, आओ सात्यकी, मेरी बहुत दिनों की इच्छा आज पूरी हो रही है। अब यदि तुम युद्ध में मैदान छोड़कर नहीं भागोगे तो जीवित नहीं बच सकोगे। एक बार मौका देता हूँ, भागना है तो भाग जाओ, नहीं तो या मर जाओ। सात्यकी ने कहा, अरे कुरुपुत्र, युद्ध में भागना ये काम सात्यकी ने कभी नहीं सीखा है और उसके गुरु ने कभी सिखाया भी नहीं। तुम मुझे डराते हो, व्यर्थ बकवाद करते हो, काम करो ना। युद्ध में बात करने का आपको समय कहां से मिला? मुझे बड़ी बड़ी आती है। मेरा मन तो आपके साथ दो दो हाथ करने का हो रहा है और आप मुझे यहां से जाने की बात कहते हो। एक कदम भी पीछे नहीं छिरकूंगा। हाँ, आपको मारकर आगे जरूर बढ़ूंगा। एक दूसरे को सब खोटी खरी सुना रहे थे। खूब भूरिश्रवा का और सात्यकी का युद्ध कौशल हो रहा था। अब इनकी क्या बताएं, कितने कितने तलवारों के पैंतरे, कितने बाणों के पैंतरे। जब शस्त्र अस्त्र खत्म हो गए तो दोनों कुश्ती लड़ने लगे। कुश्तियों के सारे पैंतरे, खम ठोकना, लपेट लगाना, हाथ पकड़ना, कैसी उनकी फुर्ती। एक बार सारा युद्ध समाप्त हो गया और कुश्ती के 32 दाव आपस में देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए। अंत में जैसे सिंह हाथी को खदेड़ता है, इस प्रकार भूरिश्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया और छाती में लात मारी सात्यकी के, और उसके केश पकड़ लिए और अपने म्यान में से तलवार निकाली और सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने की तैयारी में था ही, उसी समय उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से चाक घुमाता है, उसी प्रकार केशों के पकड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथों के सहित अपने मस्तक को यूं घुमाया सात्यकी ने। और घुमाते ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रिय सात्यकी भूरिश्रवा के चंगुल में फंस गया है और वो धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। यदि भूरिश्रवा सत्य पराक्रमी सात्यकी से बढ़ जाता है तो आज हमारा बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। जल्दी करो और उसके बाण लगाओ। अर्जुन ने मनी मन में भूरिश्रवा की बड़ी प्रशंसा की और फिर माधव से कहा, माधव, मेरी दृष्टि तो जयद्रथ पर लगी हुई है। मैं न सात्यकी को जानता हूँ न भूरिश्रवा को जानता हूँ, तो भी आपकी आज्ञा है, मैं ये दुष्कर कर्म करता हूँ। गांडीव धनुष पर एक पैना बाण लगाया और भूरिश्रवा के उस भुजा को काट दिया जिसमें तलवार थी। भूरिश्रवा ने सात्यकी को छोड़ दिया और भूरिश्रवा अर्जुन की निंदा करने लगा। अर्जुन, मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी और तो मेरी दृष्टि नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काटकर तुमने कौन से युद्ध धर्म का पालन किया है रे? जब धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर तुमसे पूछेंगे कि अर्जुन, सात्यकी के साथ लड़ाई युद्ध करने वाले लड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथ को तुमने अपने बाण से क्यों काटा, तो तुम क्या कहोगे? तुम यही कहोगे ना कि मैंने अधर्म पूर्वक भूरिश्रवा का हाथ काटा है। तुम्हें ये अस्त्र नीति क्या इंद्र ने सिखाई है, क्या महादेव ने सिखाई है, या द्रोणाचार्य ने सिखाई है? तुमको लाज आनी चाहिए। आज संसार में तुम अस्त्र धर्म के सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हो। हम तुम्हारे पर बड़ा गर्व करते थे। दूसरों के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया, इसका उत्तर तुम अपनी अंतरात्मा से पूछकर भूरिश्रवा को दो। तुम अपराधी हो। मनस्वी लोग, मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी वार नहीं करते। तुमने ये नीच पुरुषों का ऐसा पाप कर्म क्यों किया है रे अर्जुन? सत्पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सत्पुरुषों के लिए तो उन्हीं कामों को करना आसान बताया है जिन्हें अच्छे आदमी किया करते हैं। उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो बड़े कठिन हैं। मनुष्य जहां जहां जिन जिन लोगों की संगति में बैठता है उनका रंग उस पर चढ़ता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषतः कुरुकुल में पैदा हुए हो। अर्जुन, तुम सदाचारी माने जाते हो। आज तुमने क्षात्र धर्म से अपना पतन कर लिया है। क्यों? ये काम तुमको कृष्ण ने कहा? मुझे लगता है कृष्ण की सम्मति से तुमने ये काम किया है। चाहे कृष्ण की सम्मति से किया हो, तुम्हारा ये कर्म निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अर्जुन ने कहा, वाह भूरिश्रवा जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, पर हमने सुना है कि जो आदमी जितना बुढ़ा हो जाता है उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। बिना सिर पैर की बात करते हो। आप कृष्ण को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी आप कृष्ण की निंदा करते हो। आप युद्ध धर्म को जानते हो, फिर भी आप युद्ध धर्म की निंदा भी करते हो। क्षत्रिय लोग युद्ध में जब खड़े होते हैं तब वे अपने शत्रु के साथ युद्ध करते हैं, भाई, पिता, पुत्र आदि के साथ नहीं करते। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और अपने संबंधी सात्विकी की रक्षा क्यों नहीं करता? ये तो मेरे दाएं हाथ के समान है। प्राणों से भी ज्यादा वो मेरा प्रिय है। संग्राम भूमि में केवल अपनी रक्षा नहीं, अपनों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये भी तो क्षात्र धर्म है ना। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता, इसलिए मैंने इसकी रक्षा की। क्या इसका आपके पास उत्तर है? आप मेरी निंदा करना छोड़िए। आप विचार कीजिए। आपने भी तो अभिमन्यु को निशस्त्र करके अनेकों ने उसके प्राण दिए हैं। वो कौन सा क्षात्र धर्म था भूरिश्रवा जी? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने कहा, ये तो भूल है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं सात्यकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम लेता हूं। इसलिए उसने शस्त्र डाल दिए। सात्यकी को छोड़कर का मतलब सात्यकी को मारूंगा ये नहीं, अब मैंने सात्यकी को छोड़ दिया, अब मैं उपवास करता हूं। बैठ गया, प्राणों को वायु में, नेत्रों को सूर्य में, मन को स्वच्छ जल में उन्होंने ध्यानस्थ कर लिया और महा उपनिषद संज्ञक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उसने मुनि व्रत धारण किया। उस समय सारी सेना श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे। किंतु धन्य है, कितने गंभीर श्री कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने एक भी शब्द किसी को कड़वा नहीं कहा। तथापि अर्जुन को कुछ बातें भूरिश्रवा की सहन नहीं हुई, फिर भी उन्होंने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे इस व्रत को यहां सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुंच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी ना भूरिश्रवा जी, तो मेरे बाण जहां तक चल सकते थे उनके बीच में ये खड़ा है सात्यकी। तो मैंने यदि आपका हाथ काटा है तो आपको मेरी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म के मर्म को जाने बिना किसी की भी निंदा करना और आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो शोभा ही नहीं देता। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, बालक अभिमन्यु के पास कौन सा हथियार था? उसके रथ कवच सब टूट चुके थे, उसको आप लोगों ने मिलकर मारा कि नहीं? ये कौन से धर्मात्मा का लक्षण है? अर्जुन की ये बात सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया, मुख नीचा किया, चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन ने कहा, मेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है, हे भूरिश्रवा जी, वही मैं आपके प्रति भी प्रेम रखता हूं। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं कि आप उसी नर के पुत्र शिवी के समान पुण्य लोकों में जाओ। कृष्ण ने कहा, भूरिश्रवा जी, आपने अग्निहोत्र किया है तो जो अग्नि के समान प्रकाशमान लोक है उन लोकों में आप जाओ। ब्रह्मादि देवतागण आपके लिए लालायित हो रहे हैं, उनमें तुम मेरे समान गरुड़ पर चढ़ कर जाओगे। और वो बैठ गए चुपचाप, ध्यानस्थ हो गए। सात्यकी उसी समय उठा, तलवार निकाली और भूरिश्रवा का सिर काट दिया। उस समय कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीमसेन ने, युधामन्यु ने, उत्तमौजा ने, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन और जयद्रथ सभी ने रोका। ये काम बिल्कुल मत करो, अनशन व्रतधारी पर तुम इस प्रकार प्रहार करते हो। भूरिश्रवा का मस्तक काट डाला, सब लोग निंदा करने लगे। उस समय कौरव लोग ललकार ललकार कर कहने लगे, अरे धर्म का ढोंग करने वाले पापियों पांडवों, तुम जो धर्म की दुहाई देकर हम लोगों से कह रहे थे कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, आज तुमने क्या किया है? भूरिश्रवा ने उत्तर दिया, सात्यकी ने उत्तर दिया, दुष्टों कौरवों, आज तुमको धर्म और अधर्म दो का भेद मालूम देता है। जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? मेरी ये प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राम में मेरा तिरस्कार करे, उसे जमीन पर घसीट कर जीवित अवस्था में लात मारे, तो मुनिव्रत धारण क्यों न कर ले, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। ये आगे भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। कौरवों से कुछ नहीं कहा गया। सात्यकी ने कहा, अभी मैं आप कौरवों के सारे पापों का बखान करूं तो आप लोगों के पास एक एक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। फिर सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। भूरिश्रवा ने अपने जीवन में हजारों का दान किया, मंत्रपूत जल से अभिषेक किया गया था, पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता हुआ वो भूरिश्रवा दिव्य धाम में चला गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, भूरिश्रवा तो मर गया, कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ? सूर्य तो अस्त हो रहा था, क्या हुआ? संजय ने कहा, महाराज, भूरिश्रवा के परलोक के प्रस्थान करने के बाद महाबाहु अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़े को बढ़ाइए। आज जयद्रथ की तीन गतियां होंगी। यदि वह युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया तो वह स्वर्ग में जाएगा, यदि पीठ दिखाकर भाग गया तो वो भी मुझे बाणों का शिकार होगा और नरक में जाएगा, और यदि चुपचाप भाग करके चला जाएगा तो उसका अपयश होगा। चलाइए रथ। इधर शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये आपस में गुपचुप बातें करते हैं कि आज ही हमारा विजय दिवस है। यदि आज अर्जुन जयद्रथ को मार देता है तो अर्जुन मरेगा, और यदि आज अर्जुन जयद्रथ को नहीं मारता है तो अर्जुन मरेगा। आज जैसा दिन अपने को कभी मिलने वाला नहीं है। दो में से एक बात तो होगी। शकुनि ने बताया कि जयद्रथ का पिता ये कह के गया है कि मेरे बेटे को जो मारेगा, जिसके हाथ से मेरे बेटे का सिर नीचे गिरेगा, उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। आज होने दो, जयद्रथ मरता है तो मरने दो, पर युद्ध का अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ऐसा ये विचार कर रहे हैं। इधर अर्जुन ने कह दिया कि आज इसकी तीन दशा होगी, या तो अपयश, या नरक, या स्वर्ग। हे कृष्ण, आपको मेरी प्रतिज्ञा को सफल बनाने का यत्न करना चाहिए और घोड़ों को बड़े तेजी से, जब तक सूर्य अस्त न हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बड़ी तेजी से हांकना चाहिए और जयद्रथ के समीप खड़ा कर देना चाहिए ताकि जयद्रथ को आसानी से मार सके। भगवान बड़े तेजी से रथ को बढ़ा रहे थे। अर्जुन को जयद्रथ का वध करते हुए देख राजा दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर क्या बताएं, इधर जयद्रथ को हमने रोक तो दिया, दिन तो थोड़ा ही रह गया है, और इधर अर्जुन बड़े तेजी से शत्रुओं का संहार करता हुआ जा रहा है, बस थोड़ा सा समय है, किसी प्रकार जयद्रथ की रक्षा हो जाए और ये अग्नि में प्रवेश कर जाए तो फिर पांडव लोग और उनके अनुयायी लोग एक मुहूर्त भी युद्ध नहीं करेंगे और वे युद्ध को छोड़कर भाग जाएंगे। सारी पृथ्वी हमको मिलेगी, सारे पृथ्वी का मैं सार्वभौम सम्राट कहलाऊंगा, कर्ण उसके बाद मेरा स्वर्णिम जीवन आने वाला है। कर्ण ने कहा, भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बड़ा जर्जित कर दिया है दुर्योधन, मैं युद्ध में डटा रहना चाहिए, ऐसा नियम मान करके ही खड़ा हूं, नहीं तो मेरे शरीर में ताकत नहीं है, हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है। अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तुम कहो तो मैं अपने प्राण तुम्हारे लिए न्योछावर कर दूं, पर मेरे में शक्ति नहीं है। क्या शक्ति नहीं है कर्ण? यदि तुम इस प्रकार की बात करोगे तो फिर मेरा दूसरा कोई योद्धा नहीं है, तो चलो मैं युद्ध करता हूं। अब जो है कर्ण उनके साथ युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस समय कर्ण के साथ युद्ध मत करो, आकाश में देखो, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, ये कर्ण और दुर्योधन वगैरह तुमको उकसा रहे हैं, इस उकसाने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इनको और रथहीन करके, कर्ण के एक दो बाण मार करके रथहीन करके अपने रथ को घुमा ले। इस प्रकार से कर्ण को रथहीन कर दिया और फिर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा से उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, अपनी सेना को लेकर के अर्जुन आगे बढ़ा, रथ को लेकर आगे बढ़ा। जिस समय अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे, उस समय उससे बड़ी भयंकर आवाज निकलती थी धनुष से, कौरव लोग सब कांप जाते थे। अर्जुन ने देखा कि इतनी बड़ी सेना का कैसे संहार हो, उन्होंने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। ऐन्द्रास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण निकलते हैं और वे बाण प्राण लेकर के ही लौटते हैं, एक सबके प्राण ले ली, जितनी सेना थी। और इधर कौरवों ने भी कई प्रकार का शस्त्र किया। फिर अर्जुन ने एक प्रलयास्त्र चलाया, सब वीर उसमें डूब गए, सूंड कटे हुए हाथियों, दंतहीन मातंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़े, टूटे फूटे रथ, ऐसा हो गया, अर्जुन मूर्तिमान काल के समान दिखाई दिया। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा अपने जीवन से एकदम निराश हो गए। उनको ऐसा लगा कि अब हम मरने ही वाले हैं। इस प्रकार आपकी चतुरंगिणी सेना बड़ी व्याकुल हो गई और जयद्रथ को सामने किए हुए है। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3, कृपाचार्य को 9 और शल्य को 16 बाणों से, कर्ण को 32 बाण से और जयद्रथ को 64 बाणों से बीन दिया। जयद्रथ से अर्जुन के बाण सहे नहीं गए, वह अंकुश खाए हुए हाथी के समान क्रोध में भर गया और उसने कृष्ण और अर्जुन को बींद करके घोड़ों को घायल करने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन के छोड़े हुए बाण सब जो है उसके सारथी को काटने लगे और रथ को उन्होंने तोड़ दिया। सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा था। कृष्ण ने कहा, पार्थ ध्यान दो, जयद्रथ को 6 महारथियों ने अपने बीच में रख रखा है, अतः संग्राम में इन 6 को परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। सूर्य एकदम छिपने के लिए जा रहा है। देखो इस समय मैं कुछ और ही काम करने जा रहा हूं, मेरी इस क्रिया को देखकर तुम घबराना नहीं। मैं सूर्य को छिपा रहा हूं, ऐसा छिपाऊंगा कि सब लोग देखेंगे कि रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, सब हर्षित हो जाएंगे और उस समय तुम्हें कोई मारने के लिए आएगा, ये स्वयं जयद्रथ मारने के लिए इन 6 को छोड़कर तुम्हारे सामने आएगा और उस समय किसी प्रकार का मन में भय मत रखना और बाण छोड़ देना। ये तुम्हारे मन में कभी भाव न आए कि सूर्य अस्त हो चुका है, अब मैं क्या करूं। यदि तुमने ये समझ लिया कि सूर्य अस्त हो गया है, बाण धनुष तुमने नीचे रख दिए तो मारे जाओगे। अर्जुन ने कहा, केशव आप जो कहते हैं मैं तो वही करूंगा। तब योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया, एकदम अंधकार छा गया। अंधकार फैलते ही आपके योद्धा ये समझ कर कि वाह सूर्य अस्त हो गया, अर्जुन का अब अवश्य नाश होगा, बड़े खुशी हुए, इधर उधर दौड़ने लगे, खुशी के मारे सूर्य की और पूरा देख भी नहीं सके। और इस समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके यूं यूं सूर्य को देखता है। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो सावधान, ये सिंधुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य को देख रहा है, इस दुष्ट को मारने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप 6 महारथियों से आगे आ गया है, सूर्य देख रहा है, गर्दन इसकी एकदम सीधी है, इसका सिर उड़ा देना, प्रतिज्ञा करना, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करना। वह अपने बाणों से थोड़ा सेना का संहार करते हुए आगे गया और भल्ले से शल्य से उन्होंने सारथियों को गिराया, इधर उधर के सारथियों को गिराया और उस समय एक प्रचंड शस्त्र लेकर के और वो निशाना लगाकर ज्यों ही जयद्रथ को मारने ही वाले थे त्यों ही कृष्ण ने संकेत करते हुए कहा, धनंजय सावधान रहना, दुष्ट जयद्रथ का फौरन सिर काट दो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इसका पिता वृद्ध क्षत्र, इसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर ये पुत्र हुआ है जयद्रथ, इसके विषय में राजा वृद्ध क्षत्र को आकाशवाणी हुई कि राजन आपका ये पुत्र कुल शील दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्र वंशियों के समान होगा, इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में सूरवीर लोग सर्वदा आदर करेंगे, किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ से अचानक इसका सिर कट जाएगा। तब इसके पिता को इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे पुत्र का कोई योद्धा सिर काटेगा, तो उसने अपने तपोबल के द्वारा ये शाप दिया कि जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तक के भी अवश्य ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर जयद्रथ का उन्होंने राज्याभिषेक किया था और वे अभी समंत पंचक क्षेत्र में यहाँ घोर तपस्या कर रहे हैं। समंत पंचक क्षेत्र यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तुम ऐसे दिव्यास्त्र से इसका सिर काटना, ऐसे निशाने से लगाना कि उसका कटा हुआ सिर वृद्ध क्षत्र की गोद में गिर जाए, और यदि उसको पृथ्वी पर गिरा दिया तो निस्संदेह तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बड़े गंभीर हो गए। फिर वो वज्र तुल्य जो बाण लिया था उसका गहरा निशाना बनाकर और सिंधुराज के मस्तक का ठीक लक्ष्य बनाकर और फिर उसको उसके पिता की गोद में डालने का लक्ष्य बनाकर बाज की तरह से उसके मस्तक को काट कर वो बाण आकाश में उड़ा और चक्कर खाने लगा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर चला गया। और वहां जाकर हे महाराज धृतराष्ट्र जी, आपके समधि राजा वृद्ध क्षेत्र संध्योपासना कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर वो सिर पड़ा और इसका उनको पता भी नहीं चला। और वो जब कर रहे थे, उठे खड़े हुए तो उनकी गोद से वो सिर जमीन पर गिर गया और उसी समय आपके संबंधी के 100 टुकड़े हो गए। जब जयद्रथ को इस प्रकार से मार डाला गया तो भगवान ने उसी समय में अंधकार को दूर कर दिया। अब आपके पुत्र जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये कृष्ण बड़ा मायावी है, ये कृष्ण तो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार कर देता है, ये हमारे युद्ध धर्म में नहीं है, छात्र धर्म में नहीं है, चिल्लाने लगे। लेकिन जितने योद्धा वहां देख रहे थे, सूर्य भगवान तो अभी आराम से चमक रहे थे। इस प्रकार आज अर्जुन ने 8 अक्षौहिणी सेना का संहार करने के बाद, एक दिन में 8 अक्षौहिणी सेना का संहार किया और आपके दामाद जयद्रथ का वध किया। जयद्रथ को मरा देखकर आपके पुत्र इकट्ठे होकर जो वहां, हे बहनोई जी, हमें ये पता नहीं था आप हमको इस प्रकार छोड़कर चले जाओगे, कृष्ण की माया के फंदे में आप फंस जाओगे, नहीं तो इतने वीरों के रहते आप कैसे मर सकते थे। सब रोने लगे। और तो और उस समय महाराज आपके पुत्रों के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई, युद्ध करने की इच्छा खत्म हो गई और उन्होंने विचार कर लिया कि अब इस युद्ध में हमारा मरना अवश्यम भावी है। सिंधुराज को अर्जुन ने मार दिया। महाराज युधिष्ठिर ने उस समय शंख बजाया, कृष्ण का शंख, उस समय सब शंखों में तेज शंख बज रहा था, सबको पता चल गया आज बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। इधर द्रोणाचार्य को भी पता चला, द्रोणाचार्य कहे अब हम क्या कर सकते हैं। इधर कृपाचार्य को बड़ा क्रोध आया, अश्वत्थामा ने भी आक्रमण किया। अर्जुन के अंदर बड़ा उत्साह तो था ही, गुरुजी के ऊपर कृपाचार्य के ऊपर बाणों की वर्षा की, कृपाचार्य जी बेहोश हो गए और अर्जुन उनको देखकर रोने लग गया। कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण देखो विदुर जी ने हमको बताया था, धृतराष्ट्र से भी कहा था कि महाराज जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये बालक आपके वंश का नाश करने वाला होगा। आपके ज्योतिषियों ने यह भी कह दिया था कि इस पुत्र को जितना जल्दी हो सके मृत्यु के हवाले कर दो, तभी आप सकुशल रह सकोगे, इससे कुरुवंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। सत्यवादी महात्माओं की, ज्योतिषियों की बात आज एकदम सत्य हो रही है। हे केशव, दुर्योधन के कारण आज मैं अपने गुरु को बाण सैया पर सोते हुए देख रहा हूं। क्षत्रियों के ऐसे आचार बल पौरुष को धिक्कार है, एक तरफ मेरे पितामह सरसैया पर, दूसरी ओर आचार्य मेरे बाणों के निशाने पर, तीसरे कृपाचार्य ये मुझे अस्त्र विद्या में गुरु के रूप में मिले थे, आज इनको भी मैंने घायल करके रथ के पीछे बैठा दिया है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये देखो कर्ण दांत, ये कर्ण इस समय तुम्हारी तरफ आ रहा है, सात्यकी को भेजकर कर्ण के साथ युद्ध करवाओ। भगवान एकदम ध्यान बदल दिया और सात्यकी का और कर्ण का वहां पर खूब युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन कर्ण के लिए सात्यकी अकेला काफी है, पंचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ हैं, इस समय तुम इंद्र के साथ अभी युद्ध मत करना, क्योंकि इंद्र के पास एक ऐसी शक्ति है जो केवल तुमको मारने के लिए सुरक्षित रख रखी है। पांडव कौरव लोग अभी सब जयद्रथ के वध से दुखी है, उनको सुखी करने के लिए कर्ण तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उस शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, इसलिए अब तुम कर्ण के सामने मत आओ, क्योंकि ऐसा करने पर सारे कौरव जयद्रथ के मरने का दुख भूल जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु का आनंद मनाने में ये कर्ण सहयोग देना चाहता है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। कर्ण का अंत कैसे होगा ये मैं जानता हूं, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा, तुम इसको मारोगे ये मरेगा, पर अभी तुम दूर हट जाओ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय यदि ये कृष्ण अर्जुन की तरफ नहीं होते तो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का कौन क्या बिगाड़ सकता था, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, इसने तो सब युद्ध को चौपट कर दिया। संजय ने कहा, महाराज भगवान कृष्ण भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, सात्यकी को कौन हरा सकता है। सात्यकी ने जब कर्ण के साथ युद्ध किया तो उस कर्ण ने उसका रथ तोड़ दिया, उसके बाद भगवान ने उसी समय एक शंख बजा करके अपना जो रथ चल रहा था उस रथ को इशारा किया, वो रथ वहां उपस्थित हो गया, उस रथ पर कृष्ण की आज्ञा से आज सात्यकी बैठा है। क्या कर्ण के साथ उसने युद्ध किया है, कर्ण की ओर दौड़ा, कर्ण उसके पराक्रम को देखकर भाग गया और कर्ण ने युद्ध छोड़ करके और दूसरी जगह जाकर शरण ले ली। फिर दारुक का छोटा भाई आया दूसरा रथ लेकर के, बस वो रथ तो अदृश्य हो गया और सात्यकी दूसरे रथ पर बैठ गया और फिर कर्ण और भीमसेन थोड़ी देर युद्ध करने लगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सूर्य बाकी था। असल में देखा जाए तो भगवान ये बता रहे हैं कि यदि मेरी माया से सूर्य अस्त होता तो उसके बाद आपने युद्ध क्यों किया, अब कौरवों को बोलने की कोई जगह नहीं रही। और फिर वास्तव में ही सूर्य अस्त हो गए, अस्त होने के बाद फिर कृष्ण और अर्जुन सात्यकी वगैरह सब युधिष्ठिर महाराज के वहां गए। युधिष्ठिर महाराज ने सबको गले लगाया, युधिष्ठिर महाराज खूब रोने लग गए और कहने लगे कि अर्जुन आज तो तुमने हम सबको बचा लिया। अर्जुन ने कहा, मेरे में क्या ऐसी योग्यता है, कमल नयन श्री कृष्ण की कृपा है, इनकी कृपा से जयद्रथ मारा गया। अब खूब बड़े प्रेम से युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, स्तुति करी और उसके बाद बड़े आनंद के साथ विजय का शंख बजाते बजाते सब लोग अपने शिविर में चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।